ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। बागमती प्रदेश पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषित। स्वास्थ्य सेवा पहुंच का संवैधानिक अधिकार लागू करने में टीकाकरण सुनिश्चितता से और मदद मिलेगी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। रूपंदेही में आगामी कार्तिक 17 गते को उपचुनाव के लिए दल पंजीकरण हेतु निर्वाचन आयोग ने किया आह्वान। बारा के अमलेखगंज से चितवन के लोथर तक पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार कार्य शुरू। और अमेरिका ने कनाडा पर लगाया 35% टैरिफ। अब समाचार विस्तार से। बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय ने बागमती प्रदेश को पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित प्रदेश घोषित किया है। भक्तपुर के गट्ठाघर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बागमती प्रदेश को ये दर्जा प्रदान किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि समृद्ध देश और सुखी नेपाली जनता बनाना सरकार का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में निरोगी नेपाल अभियान शुरू किया गया है। संविधान में निहित नागरिकों के स्वास्थ्य सेवा के मौलिक अधिकार को लागू करने की दिशा में पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चितता, डिजिटल हेल्थ सेवा और टेलीमेडिसिन की शुरुआत को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। राष्ट्रीय कोदो दिवस आज विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। कोदो आधारित व्यंजनों का आहार खाद्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन का आधार किनारे के साथ आज राष्ट्रीय कोदो दिवस मनाया गया। भक्तपुर में कृषि और पशु पक्षी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी की मुख्य अतिथि में कोदो की रुपाई करके इस दिवस को मनाया गया। जैविक विविधता को बचाते हुए खाद्य प्रणाली के रूपांतरण में कोदो आधारित फसलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राष्ट्रीय स्तर पर कोदो की महत्ता और भूमिका को उजागर करते हुए इसकी खेती के विस्तार और प्रचार प्रसार के लिए संयुक्त प्रयासों को केंद्रित करने के उद्देश्य से इस वर्ष से राष्ट्रीय कोदो दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। कृषि तथा पशुपक्षी मंत्रालय के आर्थिक वर्ष 2081-82 के आंकड़ों के अनुसार 224,935 हेक्टेयर भूमि में कोदो की खेती की गई थी। इसमें से 3,732 मीट्रिक टन कोदो का उत्पादन हुआ था। वर्तमान में कोदो की उत्पादकता 1.33 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। पिछले वित्तीय वर्ष 2081-82 में 76,63,86,000 रूपये मूल्य के लगभग 18,316 मीट्रिक टन कोदो उत्पादन आयात किया गया, जबकि नेपाल ने 94,07,000 रूपये मूल्य के 70 मीट्रिक टन कोदो उत्पादन का निर्यात किया। बारा के अमलेखगंज से चितवन के लोथर तक पाइपलाइन विस्तार का कार्य शुरू हुआ है। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने चितवन के लोथर में परियोजना का फील्ड कार्यालय स्थापित करते हुए दूसरे चरण के पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार का काम शुरू कर दिया है। ये जानकारी परियोजना के प्रमुख प्रदीप कुमार यादव ने दी। अमलेखगंज से लोथर तक 62 किलोमीटर की दूरी में पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस पाइपलाइन के माध्यम से प्रतिवर्ष 20 मिलियन टन ईंधन की ढुआई की जा सकेगी। पाइपलाइन और भंडारण गृह निर्माण की कुल लागत 14,09,60,00,000 रुपए आने का अनुमान है। एक बार ये परियोजना पूरी हो जाने के बाद नेपाल के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति अधिक सुगम हो जाएगी। इससे ईंधन की उपलब्धता और वितरण प्रणाली में सुधार होगा। सिंधुली जिले के हरिहरपुर गढ़ी गांव पालिका वार्ड नंबर 1 बस्तीपुर में एक पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। आज दोपहर लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण एक साल के पेड़ की शाख टूटकर गिर गई। घटनास्थल पर ही 9 वर्षीय सारकी थिंग और 16 वर्षीय संता गोले की मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय के डीएसपी सूर्य प्रकाश सुवेदी ने दी। घायलों को इलाज के लिए हेटौड़ा अस्पताल भेजा गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने तुर्कमेनिस्तान के आवाजा शहर में आयोजित होने वाली भू परिवेष्ठित विकासशील देशों के तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेने के लिए नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए आज रवाना हुए। ये सम्मेलन श्रावण 20 से 23 गते तक आयोजित होगा। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के औपचारिक निमंत्रण पर प्रधानमंत्री ओली इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये जानकारी परराष्ट्र मंत्रालय ने दी। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोग ने आगामी कार्तिक 17 को रूपंदेही निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में होने वाले उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों से दल पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग ने सूचना जारी करते हुए कहा कि श्रावण 21 से 27 गति तक अपने केंद्रीय कार्यालय में दल पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इससे पहले आयोग ने उपचुनाव की निर्वाचन कार्य तालिका को मंजूरी दे दी थी। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि सरकार देश के सभी क्षेत्रों की कला संस्कृति और ऐतिहासिक संपदा के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। डाक सेवा विभाग द्वारा जारी नए डाक टिकटों के प्रथम दिवस आवरण पर मुहर लगाने के कार्यक्रम में मंत्री गुरुंग ने कहा कि नेपाल की यात्रा और पर्वों की परम्पराएं देश की पहचान है, इसलिए इनके संरक्षण और प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। डाक सेवा विभाग के महानिर्देशक मनमाया पंगेनी ने कहा कि धार्मिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाते ये डाक टिकट नेपाल की कला संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करेंगे और पर्यटन को बढ़ावा देंगे। बता दें कि विभाग ने 14 विशेष डाक टिकट जारी किए हैं। निजी और आवासीय विद्यालयों के छात्र संगठन नेशनल प्राइवेट एंड बोर्डिंग स्कूल एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने संसद में विचाराधीन शिक्षा विधेयक में निजी विद्यालयों के हितों को भी समुचित रूप से संबोधित करने की मांग की है। पैबसन ने आज काठमांडू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर शिक्षा विधेयक में आवश्यक संशोधन करके इसे यथाशीघ्र पारित करने की मांग रखी। संगठन का कहना है कि विधेयक में निजी शिक्षण संस्थानों के व्यावहारिक पहलुओं और चुनौतियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत अब कनाडा पर 25% से बढ़कर 35% टैरिफ कर दिया गया है। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से ट्रेड डील के लिए तय की गई समय सीमा के कुछ घंटे पहले ही व्हाइट हाउस ने दर्जनों देशों के लिए नई टैरिफ दरें जारी की हैं। ये दरें 7 दिनों में लागू हो जाएंगी। इससे पहले गुरुवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने मेक्सिको पर टैरिफ लगाने की समय सीमा को 90 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया था। वहीं बुधवार को ट्रंप ने घोषणा की थी अगस्त से भारत से अमेरिका आने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगेगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बागमती प्रदेश पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषित। स्वास्थ्य सेवा पहुंच का संवैधानिक अधिकार लागू करने में टीकाकरण सुनिश्चितता से और मदद मिलेगी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। रूपंदेही में आगामी कार्तिक 17 गति को उपचुनाव के लिए दल पंजीकरण हेतु निर्वाचन आयोग ने किया आह्वान। 12 के अमलेखगंज से चितवन के लोथर तक पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार कार्य शुरू और अमेरिका ने कनाडा पर लगाया 35% टैरिफ। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।